कि राजयोग क्या चीज है ये तो आप सबने समझ लिया, समझ लिया ना, समझ लिया। अब आवश्यकता है इसके अभ्यास की। जितना जितना अभ्यास करते जाएंगे उतना उतना हमारा अनुभव बढ़ता जाएगा, परमात्मा के निकट पहुंचते जाएंगे। और उसके लिए सबसे अच्छा समय है प्रातः काल का, जिसको हम कहते हैं अमृत वेला। उस समय पर वातावरण भी शांत होता है तो मन भी शांत होता है, परमात्मा से डायरेक्ट लाइन भी लग जाती है। जैसे कई बार हम टेलीफोन करते हैं तो दिन में तो काफी व्यस्त रहते हैं, टेलीफोन लाइन भी नहीं मिलती, लेकिन सवेरे सवेरे तो बहुत जल्दी मिलती है ना, मिलती है ना, तो परमात्मा से भी सवेरे सवेरे बहुत जल्दी लाइन मिल जाएगी। और टेलीफोन नंबर भी बता दिया ना, कौन सा नंबर है, 0001। मैं आत्मा बिंदु, परमात्मा बिंदु, और ये ड्रामा भी एक बिंदु है। पूर्ण विराम लगा दिया तो व्यर्थ संकल्प, अशुद्ध संकल्प, साधारण संकल्प, ये सब खत्म हो जाएंगे और श्रेष्ठ संकल्प मन में चलेंगे। बुद्धि के द्वारा मन को दिशा मिलेगी कि इस मन को कहाँ ले जाना है, शिव परमात्मा के पास ले जाना है, जहाँ मेरा घर है, शांति धाम, मुक्ति धाम। तो एक सेकंड में मन अनेक बातों से न्यारा बन सकता है। जैसे गाड़ी चलाते हैं तो अगर कोई विघ्न सामने आ रहा है, स्पीड ब्रेकर है, कुछ भी है, तो गाड़ी की स्पीड को कम करना पड़ता है। या कई बार एकदम से कोई आ जाता है अचानक, तो एकदम से भी ब्रेक लगानी पड़ती है, है ना, नहीं तो बहुत बड़े एक्सीडेंट की संभावना हो सकती है। और स्पीड कम भी सहज करना है तो ब्रेक भी तुरंत लगनी चाहिए। ये नहीं हो कि ब्रेक हम यहाँ लगाएं और आधे फरलोंग के बाद जाकर के गाड़ी रुके, या कुछ मीटर के बाद जाके गाड़ी रुके, तो थोड़ी देर के बाद भी गाड़ी रुकेगी तो भी एक्सीडेंट हो सकता है। उसी वक्त गाड़ी रुकनी चाहिए ब्रेक लगाने से। इसलिए आजकल गाड़ियों में पावर ब्रेक आती है ना, पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक, बहुत शक्तिशाली कंप्यूटराइज्ड होती है। बस उसी समय दबाया और गाड़ी रुकी। इसलिए वहां लिखा रहता है गाड़ियों के पीछे, पावर ब्रेक, प्लीज कीप डिस्टेंस, कृपया दूर रहिए, एकदम नजदीक मत आइए, क्योंकि गाड़ी खड़ी हो सकती है। तो राजयोग भी हमें बहुत सुंदर रूप से हमारे संकल्पों को, अगर व्यर्थ जा रहे हैं, अशुद्ध जा रहे हैं, तो ब्रेक लगा सकते हैं। तो कहाँ हमें ब्रेक लगाना पड़ता है और कहाँ हमें फास्ट भी करना होता है, एक्सेलरेटर भी दबाना है, परंतु ये न हो कि जहाँ ब्रेक दबानी है वहां एक्सेलरेटर दबा दो तो क्या होगा, और जहां पर एक्सेलरेटर दबाना है कि गाड़ी को थोड़ा फास्ट करे वही ब्रेक लगा दें तो क्या होगा, तो मंजिल तक थोड़ी पहुंच पाएंगे। तो वास्तव में देखा जाए ये राजयोग में कौन यात्रा करता है, आत्मा, शरीर तो यहाँ ही है, पर मन बुद्धि के द्वारा आत्मा परम धाम की मंजिल की यात्रा कर रही है। और ये जीवन भी एक यात्रा है, इस जीवन में भी कितनी बातें आती है जिन बातों का हमें सामना भी करना पड़ता है, कुछ सहन भी करना पड़ता है, कुछ समाना भी पड़ता है, तो राजयोग के द्वारा हमारे अंदर अनेक शक्तियां आती है। ये शक्तियां जो जीवन में अति आवश्यक है, जिनके बिना हम ऐसे कई गलत कर्म कर देते हैं जो हमें नहीं करने चाहिए और बाद में पश्चाताप भी होता है। हम कहते हैं मुझे करना तो नहीं चाहिए था, पर पता नहीं कैसे हो गया। ये मुझे शब्द कहना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे कह दिया। ये हाथ चलाना तो नहीं चाहिए था, पता नहीं कैसे चल गया। हाँ, अब पता नहीं, ये होता है क्या? कोई ड्राइवर कह दे हमको ब्रेक दबानी थी पर पता नहीं दबी नहीं, हाँ एक्सेलरेटर नहीं दबाना था, पता नहीं कैसे दब गया। मान लो अगर ये बहाना दे तो कानून सुनेगा सुनेगा, क्योंकि वैसे भी कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। अगर हम कहते हैं कि हमें ये कानून का पता ही नहीं था, भाई लाल लाइट जलती है तो हमें रोकनी है गाड़ी, कोई कहे हमें पता ही नहीं था, अब बताओ उसको क्या कहेंगे? उसको तो जुर्माना तो भरना पड़ेगा। बाएं तरफ गाड़ी को जाना है, अमेरिका में आप जाइए वहां दाएं तरफ गाड़ी जाती है। कोई अमेरिका में गाड़ी चलाता हो और भारत में गाड़ी चलाना शुरू करे, ओके मैं तो दाएं तरफ ही चलाऊंगा जैसे मेरी आदत है अमेरिका में चलाने की, तो चला सकेगा? जो चाहे सो कर सकता है क्या? कर सकता है, दाएं तरफ चलाए गाड़ी, बाएं तरफ ही चलाना है। तो जहां जिस देश के कानून होते हैं उस अनुसार तो चलना ही पड़ता है। तो अगर हम ये कह दें कि पता नहीं ये हाथ कैसे चल गया, पता नहीं ये जीभ कैसे चल गई, तो ये तो कोई बहाना नहीं दे सकते। ये 2.5 इंच के जिबान के लिए क्या कहा गया है कि ये जिबान एक तलवार के घाव से भी ज्यादा खतरनाक है। वो घाव तो फिर भी मिट जाएगा, लेकिन ये जिबान का घाव अगर किसको लग गया तो क्या होता है? सारी उम्र वो भूलता नहीं है। इस जिबान के लिए भी कहा जाता है ये 2.5 इंच की जिबान है। जीभ कितने इंच की है? 2.5 इंच की। किसी की थोड़ी लंबी हो सकती है, खींचो तो और लंबी हो जाए, क्योंकि इसमें हड्डियां तो है नहीं, इसलिए खींच सकते हैं, केवल मसल्स ही है। तो कहा जाता है ये 2.5 इंच की जिबान चाहे तो किसी को तख्त पर बिठाए। अब कहेंगे गुरुजी महात्मा जी दो वचन हमें सुनाएं, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, हमें कुछ सुनाएं। तो उनको आप सत्कार करके उनको गद्दी देंगे, स्थान पर बिठाएंगे, सम्मान करेंगे, तो किसी को ये 2.5 इंच की जिबान तख्त दिलाती है और किसी को तो तख्ते पर भी चढ़ाती है। तख्ते पर चढ़ाना माना फांसी दिलाना। अगर किसने केवल जीभ मुख से ही कह दिया इसको मरवाना है, मारना है, मानो हत्या करनी है, तो केवल हत्यारे को का ही दोष नहीं है, उसको तो फांसी मिलेगी। लेकिन जिसने साथ दिया, सहयोग दिया, इशारा भी किया, मुख से भी कहा, भले खुद नहीं हत्या की, उसकी भी उतनी ही सजा है जितनी हत्यारे की सजा। इसीलिए उसको तख्ते पर भी चढ़ाया जा सकता है अगर जिबान से ऐसे कह भी दिया तो। तो हम देखें कि इन इंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण चाहिए, आंखों पर भी नियंत्रण चाहिए। देखो आंख भी, हम किसी को देखते हैं, देखना कोई बुरी बात थोड़ी है, हम देखते हैं, भगवान ने आंखें दी है। अगर मैं किसको देखती हूँ और वो कह दे बहन जी ऐसे क्यों देखती हो, मैं कहूंगी भाई भगवान ने आंख दी है तो देख रही है, इसमें कोई पाप तो नहीं है। लेकिन हाँ, देखना भी पाप कब बनता है? देखना भी पाप बनता है, पर कब बनता है? जब इस दृष्टि में बुरी वृत्ति है और बुरी वृत्ति से, गंदी दृष्टि से हम किसी को देखते हैं, वासना की दृष्टि से देखते हैं, तो क्या कहा जाता है, उसी समय बद्दुआ मिल जाती है, है ना? कैसे? वो ट्रकों के पीछे लिखा रहता है ना, कि बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, तो बुरी नजर वाले को बद्दुआ मिल जाती है। और वैसे जब गुरुजी के सामने बैठते हैं कहेंगे गुरुजी की दृष्टि पड़ी, नजर पड़ी, मैं तो नजर से निहाल हो गया। तो किसी की नजर पड़ती है तो निहाल हो जाते हैं, और किसी की नजर पड़ी तो उसको बद्दुआएं हम देते हैं कि तेरा मुंह काला। अब आंखें तो वही है, परंतु अंतर क्या पड़ा, अंदर की वृत्तियों का। तो शिव परमात्मा हमें कहते हैं कि राजयोग के द्वारा हमें वो शक्तियां मिलती है जिससे हमारा जीवन इतना श्रेष्ठ बन जाता है और हम अपने इंद्रियों के राजा बनते हैं, मन के भी राजा बनते हैं। जो सोचना है वही सोचे, नहीं सोचना एक सेकंड में ब्रेक लगा सके। जो नहीं सोचना है वो सोच रहे हैं और जो सोचना है वो सोच ही नहीं रहे हैं, तो क्या कहेंगे? इंद्रियों के भी गुलाम है, मन के भी गुलाम है, मनो की परवश हो गए हैं। परवश जो व्यक्ति होता है वो तो शक्तिशाली नहीं होता है। तो मैं आत्मा इस शरीर की इंद्रियों का मालिक हूं, ये मुझे ज्ञान मिला। अब उसका चिंतन हम राजयोग में करते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं परमात्मा की संतान हूं, मैं परमधाम की वासी हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, शिव परमात्मा सर्वशक्तिवान है, मैं उसकी संतान शक्ति रूप हूं, शुद्ध आत्मा हूं। ये जैसे चिंतन करते जाते अंदर की शक्ति बढ़ती जाती है। इसलिए एक कहानी बड़ी प्रसिद्ध है, जब आजकल जैसे ना गुरु मंत्र देता है कान में देता है, कान में देने का भाव वास्तव में क्या है कि ऐसे गुप्त रीति से अपने अंदर में ये चिंतन करना है, पर वो तो नहीं होता। इसीलिए एक प्रथा बन गई कि कान में मंत्र दिया जाता है, अपने अंदर में उसका मनन करना है, ये है इसके पीछे भाव। तो एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक राजा था, उसने ऐलान किया कि मेरे पास बहुत जमीन है, पर ये जमीन मैं उसको देना चाहूंगा जो बहुत बहादुर हो। पर एक शर्त रखी, और शर्त क्या रखी, कितना बड़ा एक पत्थर था, उस पत्थर को जो एक हथौड़े से तोड़ेगा उसको ये इनाम मिलेगा, इतनी जमीन एक धक से तोड़ना है, अनेक हथौड़े नहीं। अब इतने बड़े बड़े बलशाली लोग आए, मसल मैन आए, रेसलर्स आए, सोचा अरे हम तो बहुत बहादुर है, एक हथौड़े से तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई नहीं तोड़ सका। फिर एक दुबला पतला सा व्यक्ति आया, उसने कहा मैं तोड़ूंगा, पर मेरी भी एक शर्त है, मेरी शर्त ये है कि मेरे कान में ना कोई कुछ कहेगा। तो राजा ने कहा कि ये तो शर्त कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे मंजूर है, मेरी तो एक ही शर्त है कि एक हथौड़े से ये पत्थर टूटना चाहिए। तो वो व्यक्ति सामने आया, दुबला सा व्यक्ति था, क्या तोड़ेगा, लोगों ने आश्चर्य खाया। परंतु दूसरा व्यक्ति उसके साथ था और वो उसके कान में कुछ कहता गया, और ये सुनता गया, इतनी उसको शक्ति आ गई अंदर से जो सचमुच एक धक से तोड़ दिया। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, उसने कहा इस मंत्र में कोई मंत्र दे दिया होगा कान में, उसमें जादू था जिससे शक्ति मिली, तो क्या मंत्र दिया आपको उस व्यक्ति ने? मैं सुन समझना चाहता हूँ, युक्ति सा चाहता हूँ जिससे आपको शक्ति मिल गई, तो आपके शरीर में तो कोई शक्ति इतनी थी नहीं। तो उसने कहा कि उसने मुझे और कुछ नहीं कहा, इतना ही कहा देखो तुम पहचानो अपने आप को, तुम कौन हो, तुम राजपूत हो, वो राजपूत था, तुम राजपूत हो, राजपूत माना जो कभी हार नहीं खा सकता, है ना। राजपूत के लिए क्या कहते हैं, धर्त पड़िए धर्म न छोड़िए, प्राण जाए वचन न जाए, ये रघुवीर रीत सदा चली आई। तुम राजपूत हो, राजपूत कभी हार नहीं खा सकता है, तुम विजयी हो, तुम्हारे पिता विजयी थे, तुम्हारे दादा विजयी थे, तुम्हारे परदादा विजयी थे। राजपूतों की कितनी कहानियां हम इतिहास में पढ़ते हैं। उनकी स्त्रियां उनको तिलक लगा करके भेजती थी कि हार खाकर वापस नहीं आना, भले मैदान में मर जाना लेकिन अगर वापस आना है तो कैसे आओ, विजयी होकर के आओ। तो ये जो उसको कान में कहता गया तुम विजयी हो, तो सचमुच उसको शक्ति आ गई और उसने ढक से तोड़ दिया कि मुझे हार नहीं खानी है। अब वो शक्ति कहां से आई, कोई ये शारीरिक शक्ति नहीं थी, ये उसकी मानसिक शक्ति थी, बौद्धिक शक्ति थी और आध्यात्मिक शक्ति इसमें और ऐड हो सकती है। सोने में सुहागा, भगवान मेरा साथी है, भगवान मेरा साथी है, तो ये शक्ति और बढ़ जाती है। हम दुनिया में देखते हैं मनुष्य इस शक्ति को नहीं पहचानते, वो केवल बाह्य शक्ति को ही पहचान रहे हैं। किसके पास बहुत धन है कहेंगे इसके पास तो बहुत शक्ति है, जिसको मनी पावर कहते हैं। कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है उसके पास पोजीशन है तो पोजीशन की पावर होती है। किसके पास बहुत मशीन है तो कहेंगे मशीन पावर, मनी पावर, मसल पावर, मैन पावर। किसके अंदर नीचे बहुत लोग काम करते हैं तो वो भी अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझता है, ये सब मेरे अंदर काम करने वाले हैं। तो ये सब शक्तियां हैं, लेकिन आंतरिक शक्ति न होने के कारण ये जितनी भी बाह्य शक्तियां हैं ये एक दिन धोखा दे सकती है, क्योंकि ये सब परिवर्तनशील है। और अंदर की शक्ति ही हमें जीवन में कामयाबी ला सकती है और हम सफल हो सकते हैं। तो वो कौन सी शक्तियां हैं? कई लोग समझते हैं आंतरिक शक्ति कौन सी होती है, हाँ कोई पानी पर चल के दिखाए, कोई आग पर चल के दिखाए, न जाने क्या क्या शक्तियां समझते हैं। ये भी कोई शक्ति थोड़ी है, चलो कोई पानी पर चल के दिखाए, क्या बड़ी बात की, समाज का क्या कल्याण हुआ उससे। एक कहानी मिसाल देते हैं स्वामी रामकृष्ण परमहंस का। उनके पास एक साधु गया, उसने कहा कि मैंने बहुत तपस्या की और मैंने एक सिद्धि प्राप्त की है। तो पूछा क्या सिद्धि प्राप्त की, कहा कि मैं पानी पर चल सकता हूँ। तो कहा अच्छा, आपको कितने साल लगे ये सिद्धि प्राप्त करने के लिए, कहा 12 साल लगे। कहा अच्छा, तो उसी वक्त उनका दूध वाला आया, वो नदी पार करके आया, नाव में आया, तो उस दूध वाले से पूछा आपको कितना लगा नाव में बैठकर आने में। तो कहा महात्मा गुरुजी 1 पैसा लगा, उस समय तो 1 पैसा होगा। तो कहा 1 पैसा लगा नाव में आकर बैठ कर के आने का, और इसने 12 साल लगाए ये सिद्धि प्राप्त की पानी पर चलना है, क्या जरूरत थी, कितना समय श्वास उसमें व्यर्थ गवाया, उसके बजाय तैरना सीख लो ना। कोई सोचे मैं अग्नि पर चल के दिखाऊंगा। एक व्यक्ति था लंदन में, हमारी दादी जानकी जी बता रहे थे, तो उन्होंने बड़ा प्रदर्शित किया ये अग्नि पर चलेगा। तो अग्नि पर चलेगा माना वो अंगारे थे, कोयले जलते और उस पर चलेगा। तो डॉक्टरों ने परीक्षण किया इस तरफ और वो आग से गुजरा, फिर वहां परीक्षण किया, कुछ नहीं हुआ उनके बदन पर। फिर वापस आया, 2-3 बार गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जाने से पहले खूब शराब पी और शराब पी करके वो गया, फिर शराब ही पीता रहा और आग से पार हुआ। अब उससे समाज का क्या कल्याण हुआ, अपना ही खाली अभिमान दिखाया। बम्बई में एक किस्सा था, एक व्यक्ति था कोई राव करके, मैं छोटी थी मुझे याद है, तो उसने ऐलान किया, एक टंकी बना ली और कहा कि ये व्यक्ति पानी पर चलेगा। टिकटें बिकी हजारों की तादाद में, एक टंकी बना ली और कहा कि ये ऊपर चलेगा पानी पर। लेकिन हुआ क्या, हजारों लोग खड़े हो गए देखने के लिए पानी पर कैसे चलता है, लेकिन वो सिद्धि ने काम ही नहीं किया। जैसे वो पानी पर पांव रखा चला गया, पैर अंदर इतना डर गया होगा, तो वो ऐसा 9-2-11 हो गया जो पता ही नहीं चला कहाँ भाग गया। लोग पीछे पड़े, मैं टिकट के पैसे वापस करो, वो कहाँ मिलेंगे पैसे वापस। तो ये कोई सच्ची सिद्धियां नहीं है, न इनसे कोई समाज का कल्याण होगा। कौन सी शक्ति हमें चाहिए जीवन में, जिससे हम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, संसार में रहते हुए अपना जीवन कमल पुष्प के समान बना सके। आज हम महाभारत पढ़ते हैं, गीता पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो हम उसमें देखते हैं कि इतना बड़ा रामायण रच गया, क्यों रच गया? वशिष्ठ जी ने इतना अच्छा मुहूर्त निकाला कि राम जी गद्दी पर बैठेंगे, राज्य करेंगे, कितनी खुशियां सारे राज्य में मनाई गई, पर अचानक क्या हो गया, क्यों उनको वनवास भेजना पड़ा? मुहूर्त तो बहुत अच्छा था गद्दी पर बैठने का, पर क्या हुआ कि भाई केकई को ईर्ष्या पैदा हुई, मंथरा ने उनको भड़काया कि राम क्यों गद्दी पर बैठे, तुम्हारा बेटा भरत बैठना चाहिए गद्दी पर। बस शुरू हो गया, ईर्ष्या पैदा हुई और राम को वनवास मिला। सारी कहानी है, अगर ईर्ष्या पैदा नहीं होती तो राम गद्दी पर बैठता था ना? ये मतलब मिसाल हम देते हैं। तो ईर्ष्या इतना बड़ा विकार है, जैसे हम देखते हैं क्रोध के लिए अग्नि कहते हैं, चिंता को भी अग्नि मानते हैं, कहते हैं चिंता चिता समान, उसी प्रकार ईर्ष्या भी एक अग्नि है जिसमें मनुष्य इतना जलता है, खुद को भी जलाता है और दूसरों को भी जलाता ही रहता है। तो एक ईर्ष्या के कर इतना बड़ा रामायण बन गया। महाभारत किस आधार पर बना? चलो पांडव अपने घर में सुखी थे, कौरव का राज्य था, पांडवों ने कहा ठीक है नहीं चाहिए तुम्हारा राज्य, लेकिन क्यों इतना बड़ा महाभारत हो गया? क्यों दुर्योधन को संकल्प आया कि मैं बदला लूंगा? ऐसी क्या बात थी? बात छोटी सी थी कि जब दुर्योधन उनके पांडवों के महल में आया और उसको लगा वहां पानी है, शीश महल था, तो द्रौपदी ने ऊपर से देखा कि अरे ये पानी तो है नहीं, ये तो शीशा है। उसने सोचा मैं इसमें स्नान करूं या कुछ, तो द्रौपदी हंसी और उसने कहा अरे अंधे के औलाद, अंधे अंधे, उसका पिता तो अंधा था ही, तुम भी अंधे बन गए, देख नहीं रहे हो, ये पानी नहीं है, ये तो शीशा है। यानी अंधा शब्द कहा तो क्या हुआ, बस अब इसका मैं बदला लेकर के ही रहूंगा। इतना बड़ा महाभारत छुड़ गया। तो हम देखें ये मुख से एक शब्द कहा या अंदर में ईर्ष्या से जलते रहे तो घर के घर बर्बाद हो जाते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं। हम देखते हैं ना, भाई भाई के बीच में पैसे के ऊपर झगड़ा होता है, हत्या भी कर लेते हैं, किसी ने केवल एक शब्द कहा, दूसरा सोचेगा ये क्यों कहा, उसने तो केवल एक थप्पड़ ही मारी और सामने वाले ने जिसको थप्पड़ लगी उसे तो गोली मार दी। ईंट का जवाब पत्थर से, अब उसका परिणाम क्या होगा, किसकी हत्या की तो जीवन का बदला जीवन, उम्र कैद मिल जाती है। तो किसका अगर जीवन लिया तो ये कर्म की गति है कि मेरा मुझे भी अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, जीवन का बदला जीवन। तो कई ऐसे हमसे कर्म हो जाते, फिर कितना भी पश्चाताप करो क्या फायदा? इसलिए वो शक्ति हमें चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन वो शक्ति नहीं है। जैसे मेरे वहां एक सूटकेस है, अब 20 किलो का वजन है और शक्ति तो है नहीं, तो मैं सोचूं मैं उठाऊं, कैसे उठा सकती हूँ 20 किलो का वजन? 2 किलो ही कोई उठा नहीं सकता, 20 किलो क्या उठाएगा? वो सोचे मैं उठाऊं, शक्ति चाहिए ना। और कोई शक्तिशाली है तो 20 किलो क्या, 50 किलो, 100 किलो होते ना ये जो वजन उठाते हैं, उनको इनाम मिलता है। तो शक्ति नहीं है तो चाहे ज्ञान कितना भी हो जाए, तो राजयोग के माध्यम से वो शक्ति मिलती है। अब कौन सी शक्ति है? हम जीवन में अनुभव करते हैं, जिसके आधार पर सचमुच हमारा जीवन कमल पुष्प के समान बन जाता है। और दुनिया में वो लोग ऐसे हैं जो उनको शक्ति समझते ही नहीं है। सबसे पहली शक्ति है सहन करने की शक्ति। सहन करना एक बहुत बड़ी शक्ति है। लोग समझते हैं सहन करना ये तो कायरता है, क्यों हम सहन करें, हमने क्या पाप किया। क्या समझता है ये अपने आप को, मैं सहन ही करता रहूं, ये गालियां देता रहे मैं सुनता ही रहूं, सहन ही करता रहूं, मैं भी जवाब दूंगा इसका मुंह बंद करूंगा। अब ठीक है करने की कोशिश करो, किसने दो गाली दी मैंने चार दी, फिर सोचेगा मैं भी कम हूं क्या, तो उसने 8 दी मुझे और मैंने 16 दी, फिर वो 32 देगा मैं 64 दूंगी, है ना, बढ़ता ही जाएगा ना, बढ़ता ही जाएगा, आखिर नतीजा क्या होगा, क्या होगा, महाभारत। अगर दूसरा व्यक्ति सहन कर ले, ठीक है दो गाली दी वो मुझे लगी क्या, कभी कभी हंसी में कहते हैं समझो किसने मुझे कह दिया चल मूर्ख कहीं का, मूर्ख, मैं कहूंगा अच्छा तू मुझे मूर्ख कहते हो, तू महामूर्ख, ईंट का जवाब पत्थर से, नहले पर दहला, मैं कम हूं क्या, मेरे पास है, तुम्हारे पास तो नहला है, मेरे पास तो दहला है, तो मैंने उसको जवाब दिया तू महामूर्ख है। अब पहले थोड़ा सोचिए, हमने महामूर्ख उसको कहा पर पहले ये सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि मैंने स्वीकार कर लिया ना कि मैं मूर्ख हूं, तभी तो महामूर्ख कहा। अगर मैंने स्वीकार ही नहीं किया तो महामूर्ख कहने की जरूरत पड़ेगी, तो क्यों कहा महामूर्ख, माना मान लिया कि हाँ मैं हूं तो दिखाता हूं मैं कैसे मूर्ख हूं। लेकिन उस समय हम ये सोचे कि भाई ये चलो उसने जो कुछ कहा, ये दो कान किस लिए, अगर कोई गलत बात भी है एक कान से गई दूसरे कान से निकल गई, लगी कहां मुझे, अंदर क्यों जानी चाहिए, अगर मैं नहीं हूं इस तो मैं उसके असर में आऊं क्यों। तो सहन शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है, जिस शक्ति के आधार से हम देखते हैं इतने सारे आत्माएं, महान आत्माएं किस आधार पर बनी, सहन शक्ति के आधार पर। हम कई बार कहते हैं, मिसाल देते हैं कि देखो एक आम का पेड़ जिस पर आम लदे हुए हैं, एक बच्चा उसको पत्थर मारता है तो आम के पेड़ के पास तो आम ही है, तो पत्थर उसको लगता है लेकिन जवाब में क्या देता है, आम, तो क्यों, क्योंकि उसके पास वही है। अब जब हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो हमें यह पता चला कि मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। अब बेचारा जो गालियां दे रहा है वो तो अशांत है, वो तो निर्बल है, अगर वो सचमुच अंदर का शक्तिशाली होता तो ऐसे नहीं कहता वो, लेकिन ये कह रहा है इसके पीछे कुछ राज होगा। पंजाबी में कहते हैं ना निंदक नेरे राखिए, निंदक को नजदीक में रखो, क्यों, क्यों निंदक को अपने सदा पास रखो, क्योंकि वो आपको सावधान कर रहा है कि ये आपकी गलती है, हो सकता है ये गलती हो, परंतु अगर गलती नहीं है, ये उसकी अपनी समझ है या उसकी ईर्ष्या है या उसका वहम है, तो उस पर दया करो ना, बेचारा ये नहीं जानता है। अगर गलती बता रहा है तो सुधर जाओ, अच्छी बात है मेरी गलती बता रहा है। निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो, वो हमारा मित्र है क्योंकि हमारी गलती बता रहा है, लेकिन हम अभिमान में हैं इसीलिए हमें किसी की जो गलती मेरी बता रहा है वो मुझे अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अभिमान है, तो अभिमान जिसको होगा ना उसको अपमान महसूस होगा। परंतु जो सचमुच सुधरना चाहता है बदलना चाहता है उसको अपमान नहीं लगेगा, वो तो और ही धन्यवाद करेगा, कहेगा धन्यवाद आपने मेरी गलती सुधारी बताई, मैं जरूर बदल जाऊंगा। परंतु मान लो वो गलती है ही नहीं मेरी, ठीक है कोई हिसाब किताब होगा किसी जन्म का, चुप तू हो गया खुशी करो, किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा है कि अंग्रेजी में कहते हैं एक व्यक्ति भगवान को कहता है गॉड टेक केयर ऑफ माई फ्रेंड्स आई विल टेक केयर ऑफ माई एनिमीज, हे भगवान मेरे दोस्तों से मुझे बचाओ, दुश्मनों से तो मैं खुद निपट लूंगा। क्यों दोस्तों से बचाओ, दोस्त तो अच्छे होते हैं, लेकिन कई ऐसे दोस्त होंगे जो आपके सामने तो आपकी बढ़ाई करेंगे, आपकी प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपकी ग्लानि करेंगे। वो बहुत ही खतरनाक होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, और आपको लगेगा ये तो मेरा मित्र है, परंतु आपको पता ही नहीं पड़ रहा है कि आपके पीछे वो कितनी आपकी ग्लानि कर रहा है, आपके प्रति जो वातावरण है वो बिगाड़ रहा है, और आपके सामने तो आपकी तारीफ करता रहेगा। वो तो ज्यादा खतरनाक है उस व्यक्ति से जो सामने से आपकी ग्लानि करता है, नहीं? तो हे भगवान मेरे दोस्तों से मुझे बचाओ, मैं दुश्मनों से तो खुद निपट लूंगा, मुझे पता है ये व्यक्ति कैसा है, इसके अंदर मेरे प्रति क्या भावना है, क्योंकि वो बता रहा है। इसलिए सहन शक्ति एक बहुत बड़ी शक्ति है। कोई एक पत्थर, एक पहाड़ का पत्थर, वो मूर्ति कैसे बन जाता है, पूजा के योग्य कैसे होता है? भले कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा होती है उसमें, लेकिन पहले तो पत्थर होगा ना। एक शिल्पीकार हथौड़ी और छेनी से एक आकृति बनाता है उस पत्थर में, और वो आकृति जब बनती है फिर वो पूजा के योग्य हो जाती है, पर पहले तो कितना सहन किया होगा उस पत्थर ने, तो कम किया होगा क्या? तो सहन करना ये कायरता नहीं है, ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। और ये शक्ति इसलिए भी बन जाती है क्योंकि मुझे मालूम है मैं तो एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मुझे इस आत्मा को शांति देनी है क्योंकि ये अशांत आत्मा है। अब रास्ते पर हम चल रहे हैं, कोई पागल बेचारा शराब पिया हुआ है, नशे में है, या वैसे ही कई पागल घूमते रहते हैं, और वो मैं जा रही हूँ मुझे गाली दे देगा, तो मैं जवाब में गाली दूंगी क्या? लोग हमको ही कहेंगे बहन जी वो तो बेचारा पागल है ना, अब क्या उसके, उसको तो पता ही नहीं चल रहा है क्या बोल रहा है। तो मैं अगर गाली दूंगी तो मैं तो समझदार हूँ, और मैं समझदार होकर के उसको कहूँ तो मैं भी तो पागल तो हो गई, इसलिए उसको दया आएगी, बेचारा ये नहीं जानता। एक डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाता है, बच्चा है, अब डॉक्टर देखता ये कमजोर है, तो बच्चे को जैसे इंजेक्शन लगाया और बच्चे ने पांव मारा उसके पेट में, मतलब इंजेक्शन डॉक्टर मारा, नर्स मारे जो भी, और वो बच्चे को दर्द हुआ तो पेट में पांव मारा, अब वो डॉक्टर या नर्स भी उसको पांव मारेगा क्या? करेगा, बच्चा है छोटा, बस उसको दर्द हुआ। तो हम समझदार हैं और हम समझ करके हम वैसा व्यवहार करेंगे, तो इसको कहते हैं सहन करने की शक्ति। सहन करना एक शक्ति है, और इनसे ही हमारी महानता होती है, इसका ही गायन है। लेकिन कई समझते आखिर बहन जी हम कहाँ तक सहन करें, सहन करने की भी तो कोई हद होती है ना। हम कहते हैं जरूर हद होती है, हम जानते हैं, लेकिन किस बात का सहन, किस को सहन करो, किसको न सहन करो, इसकी परख शक्ति चाहिए। इसका नतीजा क्या होगा वो पहले से ही दूरदृष्टि रखनी होगी, उसके आधार से हम उस समय कैसा व्यवहार करें हम निर्णय करें। तो कुछ बातें हमको सहन करनी पड़ती है, और कई बार सहन करके फिर उसको समाना पड़ता है, ये दूसरी शक्ति है, समझ की शक्ति। कई बार हम सहन तो कर लेते हैं, चलो बड़ों ने कुछ कह दिया तो बड़ों को सामने कैसे जवाब दें, अच्छा तो लगा नहीं, बच्चे को माँ ने कुछ कहा, या पति ने पत्नी को कुछ कहा, या सास ने बहू को कुछ कहा, अब सामने जवाब कैसे दें? तो बेचारी बहू सहन कर लेती है, चलो मुख से कुछ नहीं कहा लेकिन आंखों से कह दिया, हा? आंखों में तो गंगा जमुना बैठी है, आंखों से निकल आता है, चलो मुख से न निकला तो अब ये भी तो सही नहीं है, क्यों आंखों से निकलना चाहिए? कई लोग चलो सामने से नहीं रोएंगे, वो बाथरूम में जाकर के रो लेते हैं, या सो जाएंगे तकिया सिर पर रख करके रोते रहेंगे जब तक सब निकल न जाए। कई समझ से अच्छा है सब निकल जाए हा? तो खाली हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, लेकिन वो भी क्यों, दुख भी क्यों उठाएं? अगर कोई बात है ही नहीं तो दुख उठाने की जरूरत ही नहीं है। कहा जाता सच तभी ठो नच, सिंधी में कहावत है। जो सच्चा होता है उसको डरने की जरूरत नहीं है। लोग तो कुछ भी कह देंगे, उनका क्या है। हम किसकी जुबान को रोक थोड़ी सकते हैं। आज भारत के अंदर डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो बोलना चाहे बोलते हैं। भारत के अंदर देखो क्या क्या विचार है, वो नारे लगाते रहते हैं, काले झंडे लेकर बड़े बड़े राजनेताओं के आगे खड़े होते। अभी क्या कर सकते हैं राजनेता, पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है। विदेशों में, कई देशों में ऐसे नहीं है। लंदन में एक बड़ा बगीचा है, अगर किसी भी राजनेता के विरुद्ध कुछ कहना है, कुछ भी करना है, तो सब जगह नहीं कर सकते हैं। एक बगीचे में जाओ, वहां जितने भाषण करने हैं करो, जो करना है करो, परंतु कुछ और कुछ नहीं करना, भाषण भले करो। है वहां एक पार्क बना हुआ है, बहुत बड़ा पार्क है, तो करते हैं। किसको हम रोक सकते हैं, किसके मुख हम रोक सकते हैं, रोक सकते हैं, लेकिन हम अपनी स्थिति को तो ना बिगाड़े ना। तो कई बात चलो सहन तो कर लेते हैं, पर उसका दुख भी नहीं उठाना चाहिए। अगर मेरी गलती नहीं है तो ठीक है, एक दिन समझ जाएगा, परंतु गलती है तो सुधारो। कई बार क्या होता है, अंदर सहन नहीं कर सकते, सामने जवाब भी नहीं देंगे, तो उनको सामने नहीं जवाब देंगे, दूसरे को जाकर के कहेंगे। घर में झगड़ा हुआ सास बहू का, तो सास को तो कुछ नहीं कहा, पर पड़ोसी को जाके बताएगी, मेरी सास है ना बहुत खराब है, सारा दिन लड़ती रहती है मेरे से। तो वो पड़ोसी को तो मिर्च मसाला मिल गया। पड़ोस में झगड़ा होता है तो दूसरे पड़ोस को खुशी होती है, तो फिर वो क्या करेगी, वो आपके सास को आके बताएगी तुम्हारी बहू ने ऐसे कहा। फिर वो ऐसा ही नहीं, वही शब्द नहीं, थोड़ा एडिशन करेगी, खटाई मिर्ची मीठा तीखा सब डाल करके और बढ़ा चढ़ा के वो बताएगी। तो सास को और बुरा लगा, हाँ मेरी बहू ने मेरे बारे में ऐसे कहा, फिर झगड़ा बढ़ गया। अब क्या किया जाए, तो उसको कहा जाता है समाने की शक्ति, जिसमें हम बताते सागर क्या करता है। सागर के अंदर कितना किचरा पड़ता है, लेकिन आप सागर का स्तर देखो कितना साफ। क्यों इतना साफ होता है, क्योंकि सागर में लहरें होती है, और उन लहरों में एक विशेषता है कि अगर कोई हल्की चीज डालते हैं उसमें, तो वो लहरें उन चीजों को या हल्की किचड़े को जैसे वो किनारे पर फेंक देगी, और अगर भारी चीज पड़ती है सागर में वो अंदर चली जाएगी। लेकिन सागर का स्तर गंदा नहीं होता, क्योंकि लहरें चलती रहती है। इसलिए ज्ञान सागर परमात्मा के हम बच्चे हैं, इसलिए मन में अगर ज्ञान का मनन चिंतन चलता रहेगा तो कभी भी किसी की बुराई का हम पर असर नहीं पड़ेगा। अगर बेकार चीज है तो एक कान से सुना दूसरे कान से निकल गए, अगर काम की चीज है तो ग्रहण कर लो और बदल जाओ। इसमें क्या है, हमारे फायदे के लिए ही कहा जो कुछ भी कहा। पर अभिमान होगा तो अपमान महसूस होगा, इसलिए सागर की तरह विशाल हृदय हमारा होना चाहिए। और हम ये निश्चय कर ले कि चलो हर एक आत्मा एक एक्टर की तरह है, हर एक अपना अपना पार्ट है, और जो करेगा वो तो भरेगा ही। इस समय इनका ये पार्ट है, कभी रावण का पार्ट है, कभी राम का पार्ट है। एक एक्टर कितने पार्ट बजाता है, एक एक्टर वो अमिताभ बच्चन के लिए कहते हैं इतना उसके फिल्मों में वो काम करता है, तो एक फिल्म में तो राजा है, दूसरे फिल्म में तो फकीर है, एक कूली है, तीसरे फिल्म में तो बबरची है, चौथे फिल्म में तो पता नहीं क्या है, हाँ ससुर है, कहाँ पति है, कहाँ भाई है, कहाँ बेटा है, मतलब कितने रोल बजा रहा है, पर उसका अस्तित्व तो एक ही है। तो ये संसार में भी क्या है, अनेक रोल बजा रहे, अलग अलग पात्र हैं, अलग अलग पार्ट है, कभी रावण बनता है, कभी राम बनता है। जब बहुत साल पहले जब रामायण की फिल्म टीवी पर आने लगी थी तो बहुत इसके शौकीन हो गए थे, तो वो 10 बजते थे सब टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते थे संडे के दिन, याद होगा कईयों को। तो उन दिनों में मैं किसी स्कूल में गई थी, बच्चे थे 15 साल की लड़कियां थी, तो मुझे मूल्यों पर भाषण करना था, जीवन में मूल्य। तो मैंने उन लड़कियों से पूछा कि आप लोग रामायण देखते हो? तो कहा हाँ देखते हैं। तो मैंने पूछा आपको, क्योंकि मूल्यों पर बात करनी थी, तो मैंने ऐसे पूछ लिया, आपको किसका पात्र बहुत अच्छा लगा? तो सबने एक ही स्वर में कहा रावण, रावण का पात्र बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अच्छा रावण का पात्र अच्छा लगा, तो कहे हाँ। मैंने कहा राम का पात्र अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैंने मन में सोचा था राम का पात्र कहेंगे तो राम के क्या मूल्य थे वो बताऊंगी। तो उन्होंने सबने कह दिया रावण, जवाब ही दूसरा दिया। तो मैंने कहा अच्छा रावण का पात्र क्यों अच्छा लगा? तो क्या क्या रावण के बोल थे, क्या शक्ति थी, मतलब लड़कियों ने एक्टिंग करके दिखाया। तो अभी कैसे मैं अपने मूल्यों पर मैं आऊं? तो मैंने कहा अच्छा राम का पात्र क्यों नहीं अच्छा लगा? कहा वेरी बोरिंग, बोरिंग। मैंने कहा क्यों? तो एक लड़की खड़ी हुई और एक्टिंग करने लगी। राम का पात्र कैसा था? जब वो खड़ा होता पहले मुस्कुराता है, फिर एक देखता है, फिर सोच समझ करके एक शब्द बोलता है, धीरज रखता है, इसलिए बोरिंग। और रावण तो ढे 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 बस वो अच्छा लगा। परंतु मैंने कहा अच्छी अच्छी बात है आपको, वो स्क्रीन पर तो रावण की एक्टिंग बहुत अच्छी लगी, पर जीवन में रावण जैसा आपको पिता हो मिल जाए, तो रावण जैसा पिता पसंद है? तो बोला नहीं 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 नहीं। अच्छा रावण जैसा भाई पसंद है? कहा नहीं। खड़े रहिए, और बहुत बड़ा हॉल था, बहुत बड़ा जबरदस्त हॉल था, एक बड़ी बिल्डिंग थी, उसमें कई बिल्डिंग्स थी, खुले थी, पता नहीं बहुत कुछ था। तो हमें कहा गया कि आप यहाँ खड़े रह करके सब देखो। तो खड़े रहे हम लोग, लेकिन ये कहा कि आप डरना नहीं। कहा ठीक है नहीं डरेंगे, खड़े। तो एक दो को पकड़ के खड़े थे, कहा एक दो को पकड़ो लेकिन डरो मत, ये हिलेगा। मैंने कहा ठीक है, तैयार हो गए थे, खड़े हो गए। तो अचानक क्या हुआ, धक्का लगा, सब घबराने लगे। धक्का लगा तो एक दो पर गिरने लगे, फिर पकड़ गए, संभल लिया, क्योंकि हम लोगों को कहा गया था कि डरना नहीं। फिर अचानक क्या हुआ, ठा हुआ एक बिल्डिंग गिरी, दूसरा ठा हुआ, एक मनुष्य को आग लगी, तीसरी पता नहीं ठा 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 होता गया, सब कुछ तोड़ फोड़ सामने, इतना विशाल सब टूट फूटने लगा। लोग तो डरने लगे और हम लोगों को कहते डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं। तो वो ठा हो रहा है और वो जलता हुआ व्यक्ति नीचे गिर रहा है, पुल टूट रही है, बिल्डिंग गिर रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और हम सब साक्षी होकर के देख रहे हैं। और बार बार हमें कहा जा रहा है डरना नहीं डरना नहीं डरना नहीं। अच्छा फिर जब सब टूट के सब कुछ जैसे नष्ट हो गया, फिर हमें कहा कि अभी फिर वापस होगा ये सब, डरना नहीं। तो फिर हम लोग जैसे हिले, जो प्लेटफॉर्म पर हम खड़े थे, करीब 100-150-200 लोग खड़े थे, फिर जैसे ही ठा 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 हुआ, जो चीज जैसे थी सब वापस आ गई, वो बिल्डिंग वापस आ गई, वो व्यक्ति वापस आ गया, जल कर गिर गया तो वापस आ गई, वो पुल टूट गई वापस आ गई, पता नहीं कैसे आ गई, अब ये क्या था वो हमें भी पता नहीं, लेकिन सब कुछ वापस आ गया। तब हम लोगों को कहा गया कि देखो जब फिल्में जब बनाते शूटिंग करते हैं तो सचमुच थोड़ी को ये टूटता है, कुछ भी नहीं टूटता है, ये सब अंदर ही ये फिल्म शूट होती है और सब स्टूडियो के अंदर ही है और ये सब वापस आ जाता है, कुछ भी बिगड़ता नहीं है, ये केवल शूटिंग के लिए ये सब बने हुए। अभी कैसे है वो तो विज्ञान की शक्ति है, परंतु संसार भी तो ऐसा ही है, ये ड्रामा है, ये बना बनाया खेल है। इसीलिए देखो ग्रंथ में आता है, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नाही, चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। कोई अनहोनी नहीं हो रही है जो चिंता करो, इसलिए न दुख करो न डरो न चिंता करो न आश्चर्य खाओ न प्रश्न करो। ये संसार एक खेल है, एक ड्रामा है, हर दृश्य के पीछे कोई राज है, इसीलिए साक्षी दृष्टा होके रहो और सहज सहन करके उसको समाओ, सागर की तरह शिव परमात्मा की याद में। भगवान के आगे कितने लोग क्या क्या गालियां देते हैं, भगवान क्या करता है क्या करता है, हम सहन करके समा लेता है ना, कि भगवान उसका बदला लेता है, लेता है क्या? नहीं, तो हम भी कौन हैं? परमात्मा के बच्चे। लेकिन कई ऐसे प्रसंग आएंगे जहां हमें अगर सहन हम करेंगे, समाएंगे, तो नुकसान हो सकता है। कैसे? छोटा सा मिसाल, बड़ा मिसाल भी हो सकता है। मान लो कोई बहू है, रोज उसके ससुराल वाले उसको तंग करते हैं। हाँ, दहेज के पीछे आजकल तो कितनी बातें हो रही है, दहेज के पीछे जाओ माँ बाप से ये ले आओ ले आओ ले आओ। अब वो बिचारी सोचे मैं माँ बाप से कैसे लाऊं, माँ बाप गरीब हैं, ये ससुराल वाले इतना तंग कर रहे हैं, कहाँ से मैं लाऊंगी। तो वो सहन करती जाती करती जाती करती जाती, समाती जाती, किसी को बताती नहीं है। ससुराल वाले धमकाते हैं, डराते हैं, पर वो किसी को नहीं बताती है। ये अति है, सहन करती जाती समाती जाती है, और जब नहीं बताती है तो आखिर एक इसका नतीजा क्या होता है, या तो वो सुसाइड कर लेती है क्योंकि नहीं कर सकती है ज्यादा सहन, या तो फिर घर वाले ही उनको जला डालते हैं। आजकल तो बहु दहन न जाने कितना हो रहा है। अब जब बहु दहन हो गया मान लो, तो अब अगर कोई एविडेंस नहीं है, उसने किसी को भी नहीं बताया, घर वालों को भी नहीं बताया, तो ये मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन ये कानून जरूर बना है कि किसी भी घर में अगर बहू का दहन होता है, भले वो लोग कह देंगे कि सुसाइड किया, आत्महत्या की, लेकिन पति को, सास को, ससुर को, देवर को, जेठ को, जो भी उस घर में रहते हैं, सबको पहले जेल में डालेंगे। अब ये कानून बन गया है, सबको जेल में डालेंगे, और जेल में डालने के बाद फिर वो कोर्ट में उसके सब जो कुछ होगा वो कचहरी में चलता है काम। मैं एक जगह पर गई थी गुजरात में, जेल में भाषण करने के लिए, तो वहां मैंने देखा बहुत अच्छे अच्छे लोग, ये माना जेल में है। मैंने कहा इन्होंने क्या पाप किया होगा, क्या भूल की होगी जो जेल में पड़े हैं, सारा परिवार। तो कहा कि इनके बहू जल गई। अब वो कहे माता जी बहन जी मैंने कुछ नहीं किया, वो सास बोले मैंने कुछ नहीं किया, वो खुद ही जल के मर गई, मैंने कुछ नहीं किया। वो जेलर ने कहा ये तो बाद में पता चलेगा, अभी तो सबको जेल में डाल दिया है, सबको जेल में डाल दिया। लेकिन अगर वो बहू ने किसी को भी नहीं कहा, कोई एविडेंस ही नहीं है, कोई प्रकार क्या मानो प्रमाण ही नहीं है, तो क्या होगा परिणाम? छूट जाएंगे, भले उन्होंने किया भी होगा। अब ये गलत है, यानी इस बहू कोई बकरी थोड़ी है कि उसको पकड़ करके पेट्रोल डाले या केरोसिन डाल के जला दे। अरे इंसान को, अपने हमशरी को, विचित्र बात तो ये है, सास अपने बहू को करती, अपनी हमजिंस, अपने जैसी, हा? नारी ही तो है, नारी ही नारी की दुश्मन बन जाती है। अब बिचारी वो तो कितना सहन करती है, अब इतना सहन भी नहीं करना है, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। जरूर हम रिपोर्ट कराए, आजकल तो ये कानून बन गया कि अगर किसी स्त्री को कुछ भी ऐसा इस प्रकार का कठिनाई होती है या कहीं से भी, तुरंत वो रिपोर्ट करे, पुलिस में रिपोर्ट करे, वो एक अपराध बन जाएगा। एक बड़े कानून बन रहे हैं क्योंकि नारी के प्रति शोषण बहुत हो रहा है। तो इसीलिए ये सब कानून क्यों है, क्योंकि अति भी नहीं करना है। तो ये तीसरी शक्ति दिखाई, परख शक्ति, परख शक्ति, परख शक्ति क्या है? उस बात को परखो कि इसका परिणाम क्या निकल सकता है। जैसे एक हीरा पारखी क्या वो करता है, हीरे को तराशता है, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के वो काटता है, हीरे को देखता है कि कहाँ उसकी कैसे चमक आ सकती है। तो तराशने से क्या होता है, चमक बढ़ती जाती है, परख करके मैग्नीफाइंग ग्लास से। तो राजयोग के द्वारा वो परखने की शक्ति आती है, जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि इसका नतीजा क्या निकल सकता, आदि मध्य अंत सोचना होता है, और फिर निर्णय देना होता है कि मुझे क्या करना है। अगर कोई दो गाली दे तो उसकी परवाह मत करो, सामने जवाब कभी मत दो, वो कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु बड़ी बात कब बनती है, हम कई बार बताते, देखो मान लीजिए आप माताएं घर में अकेली है और अचानक कोई आ गया, बंदूक दिखाता है, कहेगा निकालो सब नहीं तो मार डालूंगा, मान लो, अब क्या करेंगे आप? लड़ना शुरू कर देंगे, क्या करेंगे? माताएं क्या करेंगी? आप उनको भाई जान बची, लाख उपाय, तुमको जो चाहिए ले जाओ, लेकिन जान बचनी चाहिए। धन गया, कुछ नहीं गया, धन वापस आ जाएगा, चिंता कभी नहीं करना। लेकिन जीवन उनसे ज्यादा महत्व का है। परंतु मान लो वो मेरे धन के पीछे नहीं है, वो मेरे चरित्र के पीछे है, तो मैं क्या करूंगी? दे दूंगी, कोई बात नहीं, लड़ना नहीं है। ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, लड़ना है, बिल्कुल लड़ना है। मर जाऊंगी लेकिन चरित्र नहीं दूंगी। उसके लिए भले लड़ो ना। आप लोगों ने पढ़ा होगा कई साल पहले एक दो बच्चे, चोपड़ा बच्चे, दो बच्चे थे, वो दो व्यक्ति उनको मिले रास्ते में। वो तो जा रहे थे फिल्म स्टूडियो में कुछ शूटिंग करने के लिए, और दो व्यक्ति मिले, उनको किडनैप कर लिया, उनका अपहरण कर लिया। अपहरण करके उनको किसी जंगल में ले गए और वहां उनके प्रति बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़े और अंत में उन्होंने उनको मारा। 22 स्टैब वो चाकू के लगे, मर गए बेचारे। लेकिन उन्होंने अपने आप को सरेंडर नहीं किया, मरने के मर गए। पर उसके बाद वो पकड़े गए, रंगा बिला, नाम सुना होगा ना, बहुत बड़ा केस हुआ था, किडनैप, रेप और मर्डर। और उनको उसी वक्त फांसी मिली थी दोनों को, क्योंकि तीन बड़े बड़े अपराध उन्होंने किया। परंतु आज वो बच्चे जिन्होंने अपना जीवन भले दिया, लेकिन आज उनके नाम पर अवार्ड्स मिलते हैं बच्चों को, चोपड़ा अवार्ड, वो बच्चों का अवार्ड प्रेसिडेंट देता है, क्योंकि उतनी बहादुरी दिखाई उन्होंने। तो हम किस में बहादुर बने? अपने आत्मा की रक्षा में बहादुर बने। कोई नहीं हो सकता जो मेरी आत्मा को इस प्रकार दाग लगा सके, उसमें शक्तिशाली बनना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? व्यक्ति जहां है वहां सहन करो, कोई बात नहीं, पर जहां परिस्थिति आ गई महत्व दो। किसको महत्व देंगे? धन से ज्यादा महत्व चरित्र का है। उसके लिए मरने को तैयार होंगे लेकिन चरित्र नहीं देंगे, लड़ेंगे। तो चरित्र बहुत ऊंची चीज है आत्मा की, इससे आत्मा की शक्ति बढ़ती है। और वो परिस्थिति का सामना किया, तो परिस्थिति जहां आई वहां सामना करना है। और जीवन में बहुत परिस्थितियां आती है, घबराने की क्या बात है, डरने की क्या बात है, ये तो परीक्षा ही आएगी और जाएगी, ये तो हवा का झोंका है, कोई भी बात रहती तो नहीं है, वो वहां चली जाती है। अच्छी बात भी जाएगी तो बुरी बात भी जाएगी, और हम साक्षी दृष्टा होकर के उसको देखे, उसके प्रति हम न फंसे, न उसके आकर्षण में आए, न दुखी हो। और जीवन में ऐसी परिस्थितियां आएंगी जिसको हम रोक भी नहीं सकते। मान लो बहुत नजदीकी संबंधी की मृत्यु, अब मान लो हो गई, बहुत नजदीक था, अचानक उसकी मृत्यु हो गई, किसी की भी हो सकती है, आखिर सबको तो मरना ही है एक दिन, हर एक अपनी रिटर्न टिकट तो लेकर ही आया है ना इस संसार में आए तो, कि अमर है इस शरीर में, हैं? सबको जाना है ना कि इस शरीर में अमर हो सकते हैं क्या? जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन देह तो त्यागना ही है। और वो नजदीकी संबंधी चला गया संसार से, अब उसको हम कैसे झेले? ये है परिस्थिति का सामना करना। मान लो हम रोते हैं, अब आत्मा तो वापस आएगी नहीं, हम चाहते हैं कि वो आत्मा जहां गई उसको शांति मिले, यही चाहते हैं ना। तो अगर हम चाहते हैं कि उसको शांति मिले, तो हमें भी तो शांति में रहना होगा, तभी तो शांति मिलेगी उसे। अगर हम अशांत होते हैं तो उसको शांति कैसे मिलेगी? और हम समझते हैं हम रोते हैं तो ये हमारा प्यार है उसके प्रति, ये प्यार नहीं है। प्यार सच्चा तब मानेंगे जब हम उसकी शांति की कामना करते हैं, तो उसके लिए हम भी शांति में रहें। कई कहते हैं कि कई लोग अपने आप में जब दुखी होते ना, कहते हैं हे भगवान, जीवन में तो शांति नहीं मिलेगी मुझे, शायद मरने के बाद मिलेगी। ऐसे कई लोग कहते हैं अपने लिए, मुझे मरने के बाद ही शांति मिलेगी, जीवन में नहीं मिलेगी। लेकिन ये भी अज्ञान है। अगर जीवन में हमने शांति नहीं अनुभव की, तो मरने के बाद भी हम नहीं करेंगे। ये खेत से कहना पड़ता है, क्यों नहीं करेंगे हम? क्यों? क्योंकि अशांति के ही संस्कार है मेरे अंदर, तो जहां भी मैं आत्मा जाऊंगी अशांति रहूंगी। इसलिए अपनी शांति खुद ही तैयार करनी है अपने भीतर, ये नहीं कि दूसरे मेरे लिए शांति की प्रार्थना करे। मैं स्वयं उस शांति की स्थिति में रहूं, और अगर मैं देह भी छोड़ती हूँ कोई बात नहीं, ये तो चोला ही है ना, ये शरीर छोड़ना क्या है, वस्त्र बदलना है। क्यों डर लगता है मृत्यु का? डर लगता है क्या? आत्मा तो अमर हूँ, तो अगर मैं भी शरीर छोड़ती हूँ तो मुझे डरना नहीं चाहिए, ये तो चोला बदलना है। और अगर कोई अन्य शरीर छोड़ता है, ये ड्रामा है, खेल है, संसार में कोई भी शरीर में अमर नहीं है, ये समझना है। आखिर तो मोह त्यागना ही है, और ये सब ईश्वर के ही बच्चे हैं, मेरा तो कोई अपना है ही नहीं इस दुनिया में, अकेले ही आए हैं, अकेले ही जाना है, सुना है ना। तो वो आत्मा जहां भी गई उस आत्मा को शांति मिले, ये अगर हम अंदर में तब अनुभव कर सकेंगे या उसको शांति दे सकेंगे जब हम उस समय राजयोग का अभ्यास करते हैं। आत्मा से प्रीत थी, शरीर से तो प्रीत नहीं है ना। अगर शरीर से प्रीत है तो रख दो शरीर को, रख सकते हैं हाँ। दुखी मन से ही सही, अलविदा तो करना ही पड़ेगा हाथ जोड़ करके, भले दुखी मन से ही सही, क्योंकि वो तो पंच तत्वों की चीज, तो पंच तत्व वापस जरूर लेंगे। अगर आत्मा से प्रीत है तो भी रोने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, और मेरा हिसाब किताब इतना ही था मैं उस आत्मा को शांति का दान दूं, शांति में रह करके। और अगर ये भी कोई न दे पर मैं शांति में रहूं, तो भले मेरे पीछे कोई अशांत हो पर मैं जहां आत्मा जाऊंगी मैं शांति में रहूंगी, क्योंकि शांति के संस्कार में आत्मा अपने साथ ले गई। इसीलिए कबीर का बड़ा सुंदर दोहा है, सुना होगा, कबीरा जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए जग हंसा, लेकिन ऐसी करनी कर चलो जो अंत में तुम हंसो जग रोए। पर हम कहते जग भी रोए क्यों, उनको भी ये खुशी हो कि ये आत्मा जहां जाएगी वहां भी सबको सुख देगी, रोए भी क्यों। पर और हम भी हंसते हंसते जाएं, क्योंकि हमें पता है कि ये जन्म तो मैंने सफल किया ही, लेकिन जहां भी मैं आत्मा जाऊंगी वो भी जन्म सफल ही करूंगी, तो मैं भी खुशी खुशी जाऊंगी, दुखी होकर के क्यों जाऊं। अब ये सब बातें कैसे आती है, राजयोग से आती है, तो परिस्थिति का सामना करने की शक्ति। फिर उसके बाद कई अन्य शक्तियां दिखाई है, जैसे सहयोग की शक्ति, सहयोग भी एक शक्ति है, एक दो को मिल करके एक साथ दे करके काम करना, एक और एक 11 बन जाए, ये बहुत बड़ी शक्ति है। एक उंगली से क्या होगा, पांचों उंगली उठाती है कोई चीज तो उठ सकती है, एक से कैसे उठेगी। तो ये सहयोग देना और लेना ये भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। आप देखेंगे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये शक्ति बहुत काम कर रही है। कई हमसे कहते हैं बहन जी आप लोग इतनी सारी बहनें यहाँ रहती हो, कभी आपस में लड़ती नहीं हो क्या? हम लोगों से पूछते हैं कई लोग। हम कहते हैं देखो लड़ना तब होता है, दो बातों के कारण लड़ना होता है, और अगर कोई लड़ता है इन्हीं दो बातों के कारण ही होता है। एक होता है ये तेरा है ये मेरा है, भाई भाई के बीच झगड़ा क्यों होता है, ये तेरा हिस्सा ये मेरा हिस्सा, मुझे कम मिला तुमको ज्यादा क्यों मिला, मुझे भी इतना मिलना चाहिए, मेरा तेरा, तेरे मेरे में झगड़ा होता है, तू तो मैं, इसी को ही कहते हैं ना, तेरा मेरा का झगड़ा है। यहाँ वो झगड़ा है ही नहीं, क्योंकि न कुछ मेरा है न कुछ तेरा, ये सब ईश्वर का है, मेरा कुछ है क्या, ये पहली बात है, तो झगड़ा क्यों होगा। दूसरी बात है क्यों झगड़ा होता है, मैं क्यों बदलूं, ये बदले, इसको बदलना चाहिए, ये मेरे सामने आके माफी मांगे, मैं क्यों मांगू, ठीक है मत मांगो, तो क्या होगा, वो जैसे सूखे बांस की लकड़ियां जंगल में होती है तो आपस में टकराई, आग लगती है, जंगल के जंगल जल जाते हैं, केवल दो सूखी लकड़ियां जो बांस की है उन्होंने टकराया आपस में। तो शिव परमात्मा ने हमें एक बहुत सुंदर स्लोगन दिया इस विश्वविद्यालय में, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, खुद बदल जाओ, दूसरे से बदलने की अपेक्षा मत करो। ये भी भिखारी बना है, मांगना है कि ये क्यों नहीं बदलता, तो नहीं बदलेगा तो हम भी नहीं बदलेंगे क्या? वो बदले न बदले, मुझे बदल करके उसको बदलने की प्रेरणा देनी है, मुझे सहयोग देना है, वो दे न दे, क्योंकि ये भगवान का कार्य है। हम ये मानते हैं, हमने देखा है, हम गुरुद्वारों में जाते हैं, बड़े बड़े लोग जो घर में कभी किचन में जाके पानी का ग्लास भी खुद भर के नहीं पिएंगे, नौकर हैं चारों तरफ, लेकिन वे बड़े लोग गुरुद्वारों में पानी देते हैं, पिलाते हैं, बर्तन मांजते हैं, सरोवर साफ करते हैं, बड़े बड़े लोग कार सेवा जब करते हैं, घर में कभी नहीं करेंगे और वहां करते हैं, क्यों? उस समय क्यों ये सोच चलता है कि हम कार सेवा करें? क्योंकि ये ईश्वर का कार्य है, भगवान का कार्य है। तो यहां भी भगवान का कार्य समझकर हम सब करते हैं, तो मिलकर के करते, मेरा तेरा तो कुछ है ही नहीं, इसीलिए झगड़ने की तो कोई बात ही नहीं है। तो हम भी अगर ये समझ ले कि ये सब ईश्वर की सृष्टि है, हमको जो कुछ भगवान ने दिया है ये मेरा भाग्य है, लेकिन मैं इस संसार में रहकर जो करूं वो भगवान को मेरी भेंट होगी, तो मैं क्या कर्म करूं जो मैं भगवान के आगे तदमस्तक तो रहूं, नमस्कार भी करूं, लेकिन सिर उठा करके भी चलूं उस सम्मान के साथ कि भगवान हाँ मैं तेरा बच्चा, कितना ऊंचा कार्य करा। ये नहीं कि मैं सिर झुका करके ग्लानी की भावना से मैं जाऊं कि मैं एक अपराधी के रूप में हूं, उस रूप में तो न जाऊं ईश्वर के सामने। लेकिन ये तब होगा जब हमारे कर्म इस संसार में श्रेष्ठ होंगे। तो इसको कहते हैं सहयोग की भावना, जिसमें हम दुआएं लेते हैं दूसरों की, कुछ वस्तु भले कोई न दे पर दुआएं मिले। दुआ कैसे मिलेगी? जब हम उनका दिल जीतेंगे। अगर दिल नहीं जीतेंगे तो दुआएं कैसे मिलेगी? दुआ मांगी थोड़ी जाती है। कई लोग हमें कहते बहन जी बस दुआ करो, आशीर्वाद करो, तो आशीर्वाद या दुआ मांगी नहीं जाती है, वो तो दिल से निकलती है। और किसकी निकलेगी? जिसको सचमुच कुछ ऐसे प्राप्ति हुई है उसके दिल से दुआ निकलती है, अपने आप निकलती है, दुआ मांगी नहीं जाती है। तो इसलिए अगर दुआ चाहिए तो दिल से सेवा करो, तब दुआ मिलेगी। तो सहयोग दो तो अपने आप सहयोग मिलेगा, भले दूसरा दे न दे, मैं अपने मार्क्स जमा करूं सहयोग के विषय सब्जेक्ट में। फिर दो अन्य शक्तियां दिखाई है, एक है विस्तार को सिकोड़ने की शक्ति, संकीर्ण करने की शक्ति। जैसे कछुआ होता है वो अंग निकालता है, फिर जब चाहे तो अंग अंदर में ले लेता है। तो राजयोग के माध्यम से हम अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करते हैं, अपने मन में पर भी नियंत्रण करते हैं। नहीं सोचना है, फुल स्टॉप, ब्रेक लगा दिया, नहीं, उसी समय वो सोच बंद हो जाना चाहिए। और जो सोचना है उसको एक्सेलरेटर दबाओ, ये श्रेष्ठ विचार मन में लाओ, उसमें रुको मत। तो कछुए की तरह विचारों को, श्रेष्ठ विचारों को विस्तार में लाओ, फिर न्यारे बन जाओ। कर्म में अंगों को लाओ, फिर न्यारे बन जाओ। ये शक्ति मिलेगी, आत्मा को भी शक्ति मिलेगी तो शरीर को भी शक्ति मिलेगी। और फिर अंत में दिखाया है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति क्या होती है? जैसे आप किसी लंबी यात्रा पर जाते हैं तो जो आवश्यक चीजें हैं वही अपने साथ ले जाते हैं, सारे घर का सामान तो नहीं ले जाते हैं क्योंकि वापस आना है। तो हम आत्माओं को अब घर जाना है तो समेटना होगा, जो आवश्यक चीजें आत्मा के साथ जाएगी उसी को साथ में ले जाना है। आत्मा के साथ क्या जाएगी? आत्मा के साथ उसके गुण, उसकी शक्तियां, उसके सत्कर्म, ये सब आत्मा के साथ जाएंगे, बाकी तो यही रह जाना है। इसलिए उसको अपने साथ जोड़ना है, अपने साथ रखना है, क्योंकि यही हमारे साक्षी बनेंगे। बाकी इस संसार की कोई चीज साक्षी नहीं बनेगी भगवान के सामने। तो ये है अष्ट शक्तियां जो राजयोग के द्वारा हमें अनुभव होती है। और ये शक्तियां अगर जीवन में आ गई तो सचमुच हमारा जीवन कमल पुष्प के समान बन जाएगा, संसार में रहते भी न्यारा और प्यारा। और जितना कमल का हिस्सा कीचड़ से ऊपर रहता है उतना ही पूजा के काम आता है। सारा कमल का पेड़ पूजा के काम नहीं आता है, क्योंकि वो तो कीचड़ में होता है। कमल पत्ते, कमल डंडी, कमल जड़ें सब कीचड़ में होती है, लेकिन कमल का फूल ऊपर होता है और वो काटा जाता है और भगवान के आगे पूजा में काम आता है। विष्णु के हाथ में उतना ही कमल का हिस्सा दिया है जो कीचड़ से ऊपर है। तो हमें कैसा बनना है, जो भगवान को हम अपनी जीवन की भेंट कहो या अपना ही हम भेंट उन्हें दे सके, कैसे, जब अपने जीवन को कमल पुष्प के समान बनाएंगे। तो ये शक्तियां राजयोग से प्राप्त करें तो ये जीवन तो सचमुच इतना श्रेष्ठ बन जाएगा जो कदम कदम पर भगवान का धन्यवाद करेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।